विचार सागर का पाठ है जहां से चलेगा ज्ञान की उत्पत्ति में पूर्व भी जितने अंतःकरण में मल और विक्षेप होवे तब पर्यंत ही करे हैं। देख लो वो क्या रहा है, जड़ी तुसी खेती तैयार करनी है कब तक तक करोगे तैयार, जब तक ओ घा फूस ना रह जावे, डले ना रह जाण, टेमा ना रह जाण, तदे सुहागा मारोगे। जे वो शक्कर वर्गी पैली बन गई है तो फिर उस की सुहागा मारोगे है, जो साफ है तो फिर एवं बर्तन एक बार धो के रख दिते, बार बार कढ़ के उन्होंने धोते रहो तो अच्छा लगेगा, वो दिन शोभा देगा, है ना। यही कह रहे हैं ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व, मतलब ज्ञान उत्पन्न होने से पहले भी जितने अंतःकरण में मल और विक्षेप होवे तब पर्यंत ही करे कर्म और उपासना, तब तक करे ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान उत्पन्न होने से पहले पहले करे। कदों तक करे, जिन्ना चिर मल विक्षेप अंतःकरण में है तब तक। तो कैसे पता चले, यदि कसौटी भी तो चाहिए भी सानू की पता चले हुण साडे अंतःकरण में मल है जां नहीं है, जां कम है जां ज्यादा है। एक ही चिन्ह, कुछ नहीं करना, एक कंपास कसौटी लेके अपने अंतःकरण नू नाप लेना। जदों तुहाडा मन किसी का बुरा चिंतन करन तो बाज आ गया, नहीं कर रहा, समझ लो मल बहुत थोड़े रह गए। ये कसौटी नू ठीक से अपने अंदर घटा लेना। जदों तुहाडा अंतःकरण मन किसी की बुराई करन तो जां बुराई सुनन तो परहेज करने लग गया तो समझ लेना मल दूर थोड़ा रह गया, बहुत थोड़ा। हाँ, तो जदों उपासना और फिर मन चंचल है, ऐसे बैठे अखा मीट के मन दौड़ गया नाभे पटियाले, फिर फड़के लिया, फिर दौड़ गया, फिर फड़के लिया। जदों मन थोड़ी देर में टिकन लग जाए, लिया दौड़ गया, लिया दौड़ गया, थोड़ी देर में टिकन लग जाए तो समझो कम बनने वाला है। ये दो चिन्ह जे हो जाना है तो फिर ना कर्म करे ना उपासना करे, फिर ज्ञान ते जोर लगा दे, ठीक है ना। यही वो कह रहे हैं, ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व भी जितने अंतःकरण में मल और विक्षेप होवे तब पर्यंत, मैंने तब तक ही करे। शुद्ध और निश्चल अंतःकरण जांका होवे सो जिज्ञासु श्रवण के विरोधी कर्म उपासना त्याग करे। ये श्रवण के विरोधी है भाई, हुण तुसी इत्थे बैठे की कर रहे जे, श्रवण कर रहे जे, हुण जे तुसी उपासना करोगे तो विरोधी कर्म उपासना त्याग करे। ये श्रवण के विरोधी है भाई, हुण तुसी इत्थे बैठे की कर रहे जे, श्रवण कर रहे जे, हुण जे तुसी उपासना करोगे तो की करोगे, चुप करके कुंडी लगा के अंदर बैठे होगे तो कितों श्रवण कर लोगे। तो जे कर्म करोगे शुभ उपासना जप करोगे तो वह भी तो तुसी एकांत विच बैठ के करोगे तो कैसे श्रवण होगा। तो श्रवण के विरोधी होए कर्म उपासना के सहायक होए, विरोधी होए, यही वो कह रहा है ना। मल नाम पाप का है, देखो मल नाम पाप का है और अशुभ वासना का हेतु है, ठीक है। जब पर्यंत मल होवे, जब पर्यंत मैंने जब तक मल होवे तब पर्यंत अशुभ वासना होवे है। जदों तक मल होगा तब तक अशुभ वासना की होएगी। ये पता नहीं इतनी उन्नति क्यों कर रहा है, साढ़े ना ज़्यादा काम करता, आप दिन रात मरते रहने, ये पास कोई दो नंबर का पैसा आया होना। ये जदों चिंतन मन चो हट गया तो समझ लो मन च जड़ा मल है कम हो रहा, किसी की नींदा चुगली विच रुचि नहीं आ रही, ना सो करन विच आ रही, ना सुनन विच आ रही है, तो समझो कम बनने वाला है, ठीक है ना। जब अशुभ वासना होवे नहीं तब मल का अभाव निश्चय करे। देखो जब अशुभ वासना नहीं होवे, ऐसी वासना ना मन विच उभरे निंदा चुगली वाली, तो समझ लेना की करे, ये निश्चय करे मल का अभाव है भी मल नहीं है, ये निश्चय कर लेगा। ये कसौटी है अपने अपने मन ते कसौटी लगा के परख लेना चाहिए, ठीक है ना। अंतःकरण की चंचलता और एकाग्रता अनुभव सिद्ध है, अंतकरण की चंचलता और एकाग्रता, ये सारे नु पता ही है कि जदों अंतकरण दौड़ा फिरदा है उदों चंचल है, जदों रुक गया उदों एकाग्र है। जब अंतकरण रुकेगा, मन रुकेगा, तभी आनंद आएगा, नहीं तो आनंद आने वाला नहीं है। जो मर्जी कर दे रहो, सारी उम्र अखा मीट के बैठे रहो, आनंद आने वाला नहीं है। जदों तुहानू मन तुहाडा एकाग्र होगा बैठिया बैठिया दा, तब आनंद आएगा। आनंद किहदे विच आ फिर? मन की एकाग्रता दे विच। मन की एकाग्रता दे विच आनंद है, बैठण दे विच, अखा मीट के बैठण विच आनंद नहीं है। वो तो हो सकता तुहाडे नाल कोई ज़्यादा भी बैठदा होए मेरे जैसा या होर कोई, पर आनंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मन एकाग्र नहीं हो रहा। तो जदों मन एकाग्र होगा आनंद भी आएगा। तो आनंद ये मन की एकाग्रता और मन की चंचलता, ये सारे नूं पता ही अपने अपने मन का। तो जदों एकाग्र हो गया, समझ लो समाधान हो गया, ठीक है ना। तो जे चंचल होवे तो उन्हें एकाग्र करने की कोशिश करो, ठीक है ना। जाते उत्तम जिज्ञासु और विद्वान को कर्म उपासना निष्फल है। जिहड़ा उत्तम जिज्ञासु है उहदे वास्ते ना कर्म है ना उपासना है, और ज्ञानी जिहड़ा उहदे वास्ते तो कहना ही क्या है। जो ज्ञानी है उहदे वास्ते तो कहना क्या, वह कह रहा है जिहड़ा उत्तम जिज्ञासु है जिन्हों ज्ञान नहीं भी होया वह भी कर्म उपासना विच ना प्रवृत्त होवे। कर्म उपासना छड्ड के किहड़े काम लगे? ज्ञान की उत्पत्ति विच जोर लगावे, सरवण मनन निधिध्यासन विच जोर लगावे। हुण जिहड़ा तुसीं अखां मीट के बैठदे जी की कर रहे जे? निधिध्यासन। तो वह 2 मिनट कितने मन रुक गया, आनंद आएगा। जितनी देर मन रुक टिक गया उतना आनंद बढ़ता जाएगा। जितनी गहराई में जाके ध्यान लगाओगे उतना ही आनंद भी गहरा होता जाएगा, रस बढ़ता जाएगा। कर्म उपासना ते ज्ञान की रक्षा होवे नहीं। उन पूर्व पक्षी ने कहा सी ना, कर्म उपासना नहीं करेगा तो ज्ञान जिहड़ा उत्पन्न होया वह भी नष्ट हो जाएगा। तो उहदी रक्षा वास्ते कर्म उपासना करनी चाहिए। वो कह रहा ये भी गल तुहाडी गलत है। पूर्व जो कहया ज्ञान की रक्षा के निमित्त कर्म उपासना करे, जैसे जल से उत्पन्न हुआ जो वृक्ष ताकि जल से रक्षा होवे है। भी जल वृक्ष कैसे उत्पन्न होया? जल का बीज दे नाल संबंध होया, तां इह वृक्ष पैदा होया। तो बढ़िया कैसे? जल दे नाल ही। तो जदों जल देना बंद कर देंगे वृक्ष भी सुक जाएगा। अंदा ज्ञान ऐसा नहीं है कि जब तक कर्म उपासना से उत्पन्न होया ज्ञान, अंतकरण शुद्ध हो गया तो फिर भी तुसी कर्म करते रहोगे तो ज्ञान बनिया रहेगा, यह गल नहीं है। फिर तुहानूं कर्म छड्डने पैणगे। कैसे? तुहाडा बच्चा 5वीं क्लास में है, वो पास हो गया, 6ठी में गया, तो तुसी ये कहोगे नहीं पुत्र तैनू जिहड़ियां 5वीं दियां पुस्तकां सी ना वह भी लैके जाना चाहिए। क्यों? तैनू 5वीं च भेजण 6वीं च भेजण वालियां किहड़ियां पुस्तकां? ये ना छड्डी, देखी कि जे तू ये छड्डती आ इन्हां ते तैनू 6वीं च भेजिया पुत्र, ये ना छड्डी। तो फिर 7वीं च नहीं जा सकता, वो उत्थे ही रह जाएगा। इस वास्ते वो जिहड़ी क्लास आ उहदियां पुस्तकां उत्थे ही छड्डनियां पैणगियां। ता ही दूसरी क्लास का पुस्तक लैगो। यह कर्म उपासना भी यही है, कर्म का और उपासना का जदा जिनी स्टेज है वह छड़ के फिर ज्ञान में प्रवृत्त हो गए। जो कर्म उपासना ही करते रहोगे तो ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता, ठीक है ना। जल का संबंध नहीं होवे तो वृक्ष भी सूख जावे हैं, तैसे कर्म उपासना से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान ताकि कर्म उपासना से रक्षा होवे है। जो ज्ञानी कर्म उपासना नहीं करे तो अंतकरण मलिन और चंचल फिर हो जाएगा। ता मलिन और चंचल अंतकरण में सूखी भूमि में वृक्ष की न्याई उत्पन्न हुआ ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। जाते ज्ञानवान भी कर्म उपासना करे, ऐसा जो उन्हें पूर्व पक्षी ने कहा सी, अब एदा उत्तर दे रहा सो बने नहीं। कहता यह गल गलत है, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? काहे ते क्यों नहीं हो सकता? अभास सहित अथवा चेतन सहित जो अंतःकरण की मैं असंग ब्रह्म हूँ जह वृत्ति, सो वेदांत का फल रूप ज्ञान है। ताका कर्म उपासना से बिना नाश होवेगा अथवा चेतन स्वरूप का ज्ञान का नाश होवेगा। वो कह रहा तुसी कह रहे जे ना कि कर्म उपासना नहीं करे तो ज्ञान का नाश हो जाएगा। वो 2 प्रश्न कर रहा है, ਕਿਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਮੋਪਾਸਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਰਮੋਪਾਸਨਾ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ? ਇਹ ਸਿਧਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਤੇ ਅਭਾਸ ਸਹਿਤ ਅਥਵਾ ਚੇਤਨ ਸਹਿਤ ਜੋ ਅੰਤਾਕਰਨ ਕੀ ਮੈਂ ਅਸੰਗ ਹੂੰ ਜਹ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸੋ ਵਿਦਾਂਤ ਕਾ ਫਲ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਸੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਥਵਾ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ? ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਉਸਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਐਸਾ ਕਹੋ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਦਾਂਤ ਕਾ ਫਲ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਸੇ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਔਰ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਕੇ ਤਿਆਗ ਸੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਨਿਮਿੱਤ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਐਸਾ ਕਹੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਿੱਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਜਨਮ ਚ ਆਏਗੀ ਨਾ ਮਰਨ ਚ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ? ਗਿਆਨ ਕਹੋਗੇ? ਗਿਆਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਸੋ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਕਾਹੇ ਤੇ ਏਕ ਵਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਆ ਜੋ ਅੰਤਾਕਰਨ ਕੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਸੇ ਅਗਿਆਨ ਔਰ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਰੂਪ ਫਲ ਤਿਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਪਈ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਡਰਾਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਾਰਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਪਈ ਵੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਡਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਾਕਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਿਆਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਜੋ ਅੰਤਾਕਰਨ ਕੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ, ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ, ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ, ਐਸੀ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਆਵਰਣ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਵੀਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੰਜਵੀਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਵਰਣ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੀ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ, ਉਹ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਮਰ ਜੇ, ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਏ 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 ਕਰਦਾ ਮਰੇ, ਜੈਸੇ ਵੀ ਮਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗੇ ਆਏਗਾ ਸਾਤਵੀਂ ਤਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਭ, ਚਾਹੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਸੇ ਮਰੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮਰੇ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਜੋ ਅੰਤਾਕਰਨ ਕੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਸੇ ਅਗਿਆਨ ਔਰ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਰੂਪ ਫਲ ਤਿਸੀ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਿਆਨ ਔਰ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਰੂਪ ਫਲ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਔਰ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਅਨੰਤਰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਾਤਪਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਰਣ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਅੰਦਰ, ਉਸਨੇ ਆਵਰਣ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਘੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮਟੀਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਟੀਲਾ, ਐਸੇ ਗੰਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, मिट्टी वाला पानी मिट्टीला ते तुसी ओदे विच इतनी फटकड़ी सुट दित्ती ते फटकड़ी ने की कीता वो आप भी कुल गई ते सारा कचड़ा लेके नीचे बैठ गई ते पानी कैसे हो गया शीशे तरह। अब बार बार थोड़ी फटकड़ी सुटोगे तो मिट्टी नू लेके नीचे बैठेगी, वो तो एक बार बैठ गई आप भी खत्म होगी, आप भी खत्म होगी और जितना कचड़ा सी गंदगी सी सारे लैके नीचे बैठ गई। यही हाल ब्रह्माकार बिरती का है, ब्रह्माकार बिरती जो उत्पन्न होगी और जितना आवरण है विक्षेप है सारे पिछे करके आप भी नष्ट हो जाएगी और भ्रांति भी नष्ट कर देगी। तो फिर की रह गया, शुद्ध ब्रह्म बाकी रहेगा, वो मैं हूं, ऐसा चिंतन करना है। ठीक है, अंतःकरण की वृत्ति कर्म उपासना से रक्षा बने भी नहीं। अंदा अंतःकरण की जी ब्रह्माकार वृत्ति है वो दी कर्म उपासना से रक्षा कैसे करोगे? कर्म कर रहे हो तो की कर रहे हो, मैं ये हूँ, मेरे नाम ये है, ये मेरी जाति है, ये मैं कर्म कर रहा हूँ। वो जो ब्रह्माकार वृत्ति कि मैं ब्रह्म हूँ, जो मैं ब्रह्म हूँ असंग हूँ निष्क्रिया हूँ तो कम कैसे करोगे? फिर कर्म कैसे करोगे? तो कर्म न कर्म का विरोधी होया कि सहायक होया? विरोधी है, वो स्वभाव सिद्ध क्रिया है, उन्हों कम नहीं खावांगे, वो स्वभाव सिद्ध क्रिया वो अपने आप होगा। तुसी प्रसादा छकिया छक लिया तो की कर दे उन्हों पचाउन वास्ते की कर दे जे? वो अपने आप हो रहा है, उन्हों कहिंदे स्वभाव सिद्ध क्रिया। साढ़े श्वास आ रहे जा रहे हैं कि आप कह रहे हैं अंदर आ जा श्वास बाहर चले जा अंदर आ जा बाहर चले जा, वो स्वभाव सिद्ध क्रिया। लैटरिंग ऐसे थोड़ी जाके कोई लैटरिंग में बैठा रहेगा, वो जदों टाइम आएगा उदों जाएगा, ये स्वभाव सिद्ध क्रिया अपने आप होंदी रहेगी। भोजन आदि इच्छा होने ही नहीं, संकल्प ही तो है। सर्व संकल्प संन्यासी योगा रुष्टद उच्चते, सारे संकल्पां नूं छड्ड के जिहड़ा कर्म करेगा उन्हूं कहिंदे योगा रूढ़, वो योग ते अरूढ़ उच्ची स्टेज ते बैठा है। रहन गए नहीं, घटन की तो गल ही नहीं, रहना ही नहीं, रहूगा कौन? एक ही जो है वा, बाकी जिहड़ियां भ्रांतियां निवृत्त हो जाएगी। उन्हूं कहिंदे साक्षात्कार। ठीक है, तो यह की हो रहा है? कृपा ही तो हो रही, होर की हो रहा है? ये तो कृपा ही हो रही है, की है? क्यों जी मैनेजर साहब, हां घर आके देखो कृपा हो रही, होर दसो की है? चलो, अंतःकरण की वृत्ति की कर्म उपासना से रक्षा बने भी नहीं। काहे थे? जब कर्म उपासना का अनुष्ठान करेगा, देख लेना ठीक से समझ लेना, कर्म उपासना किन्नू कहिंदे है? कर्म उपासना का अनुष्ठान करेगा, जब कर्म करेगा जा उपासना करेगा, ठीक है, अनुष्ठान माने जिन्नू शिला कहिंदे आपां, है ना, ऐसा को करेगा तब कर्म उपासना की समग्री ही वृत्ति ज्ञान होवेगा। ओदी जिहड़ी कर्म उपासना की जिहड़ी समग्री है ओदा ज्ञान होवेगा ना, वृत्ति तो ओदे च लगे रहेगी। आपां जग कर रहे हैं, अहूती डालनी है, लिया भी जाओ लिया, तिल लिया, घ्यो लिया, वृत्ति तिलाकार बनेगी, घ्योकार बनेगी, ब्रह्माकार बनेगी। तो फिर उहतियां किन्नियां डाल गई, केड़े मंत्र नाल दे रहे हैं आपां, किन्नियां डालनियां, किन्नियां बाकी है, पूर्णा होती कदों होनी है, ये ध्यान रखोगे कि मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ करोगे? जदों तो मैं ब्रह्म हूँ करोगे तो फिर तो उन्हें छड्डना ही पएगा सारे नूं। ठीक है ना, यही वो कह रहा, समग्री ही वृत्ति रूप ज्ञान होवेगा, ब्रह्म का ज्ञान बने नहीं। ना ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, समग्री का ध्यान रहेगा। ठीक है ना, और वृत्ति हुए थे प्रथम वृत्ति रहे नहीं, पहली एक बार वृत्ति उत्पन्न हुई मैं ब्रह्म हूँ तो नष्ट होगी, फिर मैं ब्रह्म हूँ वृत्ति तो नष्ट हो रही है। ठीक है ना, जाते कर्म उपासना ज्ञान की उत्पत्ति उत्पत्ति ते परंपराते हेतु हैं और उत्पन्न हुए हुई वृत्ति के विरोधी भी हैं। जिहड़ी उत्पन्न हुई वृत्ति ओदे विरोधी भी हैं। जो मैं ब्रह्म हूँ करोगे तो कर्म कैसे करोगे, उपासना कैसे करोगे? ठीक है ना, जाते कर्म उपासना ते ज्ञान की रक्षा होवे नहीं। ज्ञानी को पाप और चंचलता के अभाव ते कर्म और उपासना का उपयोग नहीं। जो ज्ञानवान पुरुष है उन्हें तो ना पाप लग सकता है ना उसका मन चंचल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? पाप पाप किनू लगता बई? आंदे ना पाप मैंने मेरे से पाप मैं पापी हूँ मैं पापी हूँ। पापी किनू कहिंदे तुसी? कह देंदे ना मैं बड़ा पापी हूँ बख्श ली अहीं ते बहुत पाप कीते हुए बड़े पाप दा मतलब कहण दा तात्पर्य यह है जो तुसी शरीर दे द्वारा कर्म करोगे शरीर दे विच तुहाडी वृत्ति होएगी मैं शरीर हूँ तो फिर पाप होएगा तो उहदा फल तो देना पवेगा। सीधी गल जे तुहाडा करतापना बनिया है तो भुगतापना भी बनना पड़ेगा तो जे करतापना नहीं है तो भुगता कैसे बनोगे? ठीक है ना। सो ते ज्ञानी ते सुन लो हुण पूर्व जो कहया ज्ञानवान को कर्म के त्याग ते पाप होवे है सो वार्ता बने नहीं। कहिंदे छे ना जे ज्ञानी कर्म छड़ देगा तो उहनूं पाप लगेगा। आपां कह दिंदे ना अज जप जी साहिब दा पाठ नहीं कीता पाप लग गया। अंदर पाप कदों लगदा? कोई निषिद्ध कर्म करोगे तां पाप लगेगा कि जिहड़ा शुभ कर्म नहीं कीता उहदा पाप कैसे लग जाएगा? पाप कर्म करोगे तां ही पाप लगेगा ते शुभ कर्म नहीं कीता ते इहदा अर्थ पाप नहीं लगा शुभ कर्म नहीं बनेगा तुहाडा पाप थोड़ी हो गया। पर हुण इतनी गल समझ के जब जिसे पाठ नहीं छड्ड देना चल केड़ा पाप लगदा? हाँ पी आपां केड़ा पाप करदे आ? जब जी साहब दा पाठ नहीं होया जां सुखमणी साहब दा नहीं होया तो फिर केड़ा पाप लगया? बाबा जी कहण डए सी ये नहीं सोच लेना किसी। ठीक है ना। ज्ञानवान को कर्म के त्याग से पाप होवे है सो वार्ता बने नहीं। कहे थे जो शुभ कर्म का त्याग है सो पाप का हेतु नहीं। देख लो जो शुभ कर्म का त्याग है वो पाप का हेतु नहीं। पाप कर्म का जेड़ा कम है मतलब निषिद्ध कर्म जेड़ा है वो पाप का हेतु है भाई। शुभ कर्म नहीं किया तो की होएगा? वह फल नहीं मिलेगा तुम्हें बस इतना ही पाप है। जे हुण तुसी गंगा इशनान नहीं किया तो गंगा इशनान का फल की है? स्वर्ग लोक की प्राप्ति। तो पाप थोड़ी लगा तुहानू यह हो गया तुसी गंगा इशनान नहीं किया तुहानू स्वर्ग नहीं मिलेगा तो यह थोड़ी तुहाडे कोई पाप हो गया कोई यही वो कह रहे हैं। ठीक है ना। जो शुभ कर्म का त्याग है सो पाप का हेतु नहीं किंतु निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान ही पाप का हेतु है। जह वार्ता भाष्यकार ने बहुत प्रकार से प्रतिपादन करी है। जाते कर्म के त्याग से पाप होवे नहीं। कर्म के त्याग से पाप नहीं होगा। आप सेवेता नहीं गए अज लेंटर पैना सी वो आए सी लैंड सेवा नहीं जा पाए तो पाप लग गया ये नहीं है। ये नहीं हो सकता। वो शुभ कर्म है। शुभ कर्म नहीं होया तो पाप नहीं होया। पाप कर्म करोगे तो वो पाप लगेगा निषिद्ध कर्म फिर तो देना ही पाऊगा। ठीक है। ज्ञानवान को तो सर्व प्रकार से पाप का असंभव है। ज्ञानवान को तो पाप लग ही नहीं सकता। क्यों? काहे थे पुण्य पाप और तिनका आश्रय अंतःकरण परमार्थ से है नहीं। दो लो देख लो की कह रहे जी। वो कह रहे पुण्य पाप और तिनका आश्रय जो अंतःकरण है ये वास्तव में असलियत में है ही नहीं। परमार्थ में मैंने असलियत विच है ही नहीं। अविद्या से मिथ्या प्रतीत होवे हैं। ये तो मिथ्या प्रतीति हो रही है रज्जु में सर्प। सो अविद्या और मिथ्या प्रतीति ज्ञानवान के है नहीं। जिहड़ा ज्ञानी है उन्हें मिथ्या प्रतीति हो नहीं रही। ठीक है ना। वो तो विद्या विच है। जाते ज्ञानवान को शुभ कर्म के त्याग से अथवा अशुभ के अनुष्ठान से पाप बने नहीं। इसलिए की कहिंदे ब्रह्म ज्ञानी सदा ऐसे निर्लेप रहेगा। वो सदा एक वास्ते नहीं। आपा सुखमणी साहब रोज पढ़ लेने हैं ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। आगे दृष्टांत भी दे देने जैसे जल दे विच कमल है वो पानी दे विच तो है ही पर पानी दा उहदे नाल स्पर्श नहीं है। अगर पानी दा स्पर्श हो तो गल जाना चाहिए। वो अगर उत्ते बूंद भी एक डिगदी है तो वह टिकदी नहीं निकल जाती फिसल जाएगी। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी है। तो ब्रह्म ज्ञानी निर्लेप कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा क्योंकि परमार्थ से ना अंतःकरण है ना पाप है ना पुण्य है। वास्तव में ये भ्रांति च दिखाई दे रहे हैं, तो ज्ञानवान के भ्रांति है ही नहीं। तो जो ज्ञानवान दे भ्रांति नहीं है तो ना पाप है, वास्ते ना पुण्य है ना अंतःकरण है ना शरीर है। ठीक है, जहां स्थान में जय सिद्धांत है, मंद और दृढ़ दो प्रकार का ज्ञान है। देख लो अब क्या सिद्धांत है, मंद और दृढ़ दो प्रकार का ज्ञान है। ज्ञान दो प्रकार का, एक मंद और एक दृढ़, जहां ऐसे कह लो अदृढ़ और दृढ़। विचार चंद्र उदय में ऐसे कहा सी, चाहे मंद कह लो चाहे दूसरा शब्द का प्रयोग कर लो, दृढ़ अदृढ़ कह लो। ठीक है ना, अब किनू कह रहे, देखो संशय आदि के सहित जो ज्ञान सो मंद ज्ञान कहिए है। भी ज्ञान तो हो रहा थोड़ा थोड़ा, भी मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं, चिंतन तो हो रहा है और थोड़ा थोड़ा अनुभव भी हो रहा है, पर फिर कदी कदी भुलेखा फिर मन च उही आ जाता, अजे पाठ नहीं किया, अजे पाठ नहीं किया, अजे ये काम नहीं किया, गुरुद्वारे नहीं गए मत्था टेकन, ये जरा फिर भुलेखे पै गए ना। जो तो ब्राह्मी हूं मैं है, ये है दृढ़ कच्चा मंद है ना, इन कहते मंद। तो जो तो पक्का हो गया तो फिर तो गल की है, फिर तो नित दिवाली साध दी अठे पैर बसंत, फिर केड़ी गल, वो तो फिर तो कितने बैठो, फिर जिथे बैठोगे उथे गुरुद्वारा है, जिथे बैठोगे उथे मंदिर है, जिथे बैठोगे उथे मस्जिद, कितने जान की जरूरत नहीं है। संशय आदि के सहित जो ज्ञान सो मंद कहिए हैं, और संशय आदि के रहित ज्ञान दृढ़ कहिए हैं। जाकू दृढ़ ज्ञान होवे ताकु किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं है। जिन्हों दृढ़ ज्ञान हो गया उदे वास्ते कोई कर्म शेष नहीं बचा, उसने जो करने वाला कर्म सी वो कर लिया, नास्ती कृता कृते ना, कोई उदे वास्ते कम शेष नहीं बचा। एक बार उत्पन्न हुआ जो संशय आदि रहित अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान सोई विद्या का नाश कर देवे है। एक बार ही मैं ब्रह्म हूं ऐसे अंतःकरण की वृत्ति बनी, टिक गई, बनती तो सारे दी है पर टिकदी नहीं भई, वो थोड़ी देर टिक जावे। मान लो रस्सी पई अंधकार दे विच, ते तुहाडे पास टार्च आ, ऐसे करके टार्च घुमा दोगे तो दिखाई देगा कुछ, फिर ऐसे करके ले जाओगे तो की दिखेगा। ठीक प्रकार से उन्हें टार्च नाल और नेत्र की वृत्ति भी उसके नाल जोड़ दोगे ठीक प्रकार से, तब पता चलेगा ये रस्सी है सप नहीं है। ऐसे ही जो अंतःकरण की वृत्ति बने मैं ब्रह्म हूं, उन्होंने भी थोड़ी देर टिकाओ अंदर, वो तो खाली जैसे उदर दृष्टांत सी ना, कुत्ता खाली अंदरों जैसे दौड़ आता, इदा की वृत्ति दौड़ आती साड़ी, तो की उदा आवरण की भंग करेगी है ना। जदों रस आन लग गया तो फिर खड़ेगी, क्योंकि मन रस का भुखा है, वो संसारी रस के विच अजे तक आपां लगा रख्या है, तो वह सोचता बस यही रस है, अंदर तो रस है ही नहीं इसलिए टिकदा नहीं, जदों अंदर रस आने लग गया उन्हूं फिर नहीं आएगा बाहर। यही है अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान सो अविद्या का नाश कर देवे है। सो ज्ञान आप भी दूर हो जावे तो भी भले प्रकार से जाने आत्मा में फिर भ्रांति होवे नहीं। मतलब ज्ञान जड़ा है भले अंतःकरण की वृत्ति नष्ट भी हो जावे, एक बार ठीक प्रकार से देख लिया मैं ब्रह्म हूँ ये शरीर नहीं हूँ, तो फिर भ्रांति कैसे हो जाएगी, लेखा कैसे पै जाएगा। काहे ते जो भ्रांति का कारण अविद्या है, सो अविद्या एक बार उत्पन्न हुए ज्ञान से नष्ट हो जाएगी। जो अविद्या है और एक बार जिहड़ा ज्ञान उत्पन्न हो गया उहदे नाल नष्ट हो गई, ठीक है ना। जाते भ्रांति और विद्या के अभाव ते वृत्ति ज्ञान की आवृत्ति का कुछ प्रयोग उपयोग नहीं। आवृत्ति मैंने बार बार करना, एक बार जदों ज्ञान हो गया रस्सी नूं तुसीं देख लिया ठीक प्रकार से टार्च जगा के दीपक जगा के, यह सप नहीं है रस्सी है, तो बार बार देखोगे, दस मिनट बाद पांच मिनट बाद बार बार देखा करोगे रस्सी है कि सप है, रस्सी है कि सप है, एक बार देख लिया बस यही हाल है, एक बार अंतकरण दा ज्ञान हो वृत्ति नष्ट हो गई, अज्ञान नष्ट हो गया, बस हो गया, कम बन गया, जन्म मरण समाप्त, बार बार फिर की करना। हाँ, विलक्षण आनंद के लिए आनंद बढ़ावना होवे जीवन दा तो फिर बार बार करना चाहिए। आगे आएगा सातवीं तरंग में ये। जीवन मुक्त के देखो, जीवन मुक्ति के आनंद के वास्ते जो वृत्ति की आवृत्ति अपेक्षित होवे सो बार बार वेदांत के अर्थ का चिंतन ही करे। अंदर जीवन मुक्त मुक्ति का आनंद लेना होवे ठीक प्रकार से तो फिर बार बार यही चिंतन करे, मैं ब्रह्म हूं, वेदांत वाक्य दे आनंद बढ़ता रहेगा, आनंद बढ़ता रहेगा। हाँ, जो तुम शब्द सुनते जे किथे मन लगाते जे, शब्द के नाल लाते जे, तो जिन्ना चर सुनता रहेगा तब आनंद आएगा। जदों संसार दे विच विचरण करने लग गया खत्म, तो जिन्ना चर मन टिका रहेगा तो फिर आनंद किहदे विच होया, मन की एकाग्रता दे विच। वो किते भी लगा के कर लो, ठीक है ना। वेदांत के अर्थ चिंतन से ही बारंबार ब्रह्माकार वृत्ति होवे है, और कर्म उपासना से नहीं। कर्म उपासना से ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनेगी, वो तो वेदांत चिंतन से बनेगी। काहे ते कर्म और उपासना का अंतःकरण की शुद्धि और निश्चलता द्वारा ही ज्ञान में उपयोग है, और रीति से नहीं। और विद्वान के अंतःकरण में पाप और चंचलता है नहीं। राग द्वेष पाप और चंचलता का हेतु अविद्या है। देख लो, इन सारे का जो कारण है कौन है, अज्ञान। केदा केदा राग द्वेष रूपी पाप और चंचलता, मन की जिहड़ी चंचलता, भटकना जिन्हों कह दें आप फुरने, इहदा सारा कारण असली कारण कौन है, अज्ञान। ठीक है, ता अविद्या का ज्ञान से नाश होवे है। जाते विद्वान के पाप और चंचलता के अभाव ते कर्म उपासना का उपयोग नहीं, और ज्ञानी के प्रारब्ध की विलक्षणता और तिनकी जीवन